एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
आज की ज्ञान गोष्ठी में हम चीन के एक ऐसे लेखक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनकी कहानियों ने, आप कह सकती हैं, न सिर्फ चीन को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया।
जी हाँ,
साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले चीनी नागरिक।
और जिनका कलम नामी अपने आप में एक पहेली है, मो यान।
बिल्कुल, और ये पहेली उनके नाम से ही शुरू होती है ना? मो यान मतलब मत बोलो।
हाँ,
अब एक लेखक जिसका तो काम ही ये बोलना, वो ऐसा नाम क्यों चुनेगा?
यही तो।
ये सवाल हमें सीधे उनके जीवन और उस दौर की चीन में ले जाता है जहां सच में बोलना खतरनाक हो सकता था। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि मोयान के इसी विरोधाभासी संसार को थोड़ा समझें, उनके असली नाम ग्वान मोये से लेकर उनके नोबेल विजेता बनने तक का सफर,
जी,
और उनकी वो खास शैली जिसे मतिभ्रम यथार्थवाद या हेलुसिनेटरी रियलिज्म कहा जाता है।
हाँ, मतिभ्रम यथार्थवाद, जहाँ हकीकत और कल्पना वो ऐसे घुल मिल जाते हैं कि उन्हें अलग करना ही मुश्किल हो जाता है।
क्या ये सिर्फ कल्पना और यथार्थ का मेल है या कुछ और गहरा?
मुझे लगता है ये उससे ज्यादा है। ये शायद इस तरफ इशारा करता है कि 20वीं सदी का जो चीन का अनुभव था वो इतना, मतलब, अविश्वसनीय था, इतना टूटा फूटा था
अच्छा,
कि उसे सिर्फ सीधे सपाट यथार्थ के दायरे में बयान करना शायद मुमकिन ही नहीं था। मोयान के लिए ऐसा लगता है जैसे कल्पना ही सच के ज्यादा करीब थी।
तो चलिए पहले उस जमीन को टटोलते हैं जहां मोयान की जड़ें हैं। उनका जन्म 1955 में हुआ। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तब बन ही रहा था, माओ ज़ेडुंग का दौर था।
जी, वो जबरदस्त उथल पुथल का दौर था। राष्ट्र निर्माण हो रहा था, एक तरफ तो सामाजिक विचारधारा का पूरा जोर था, खेती का सामूहिकीकरण,
हाँ,
पुरानी परंपराओं को, मूल्यों को नकारा जा रहा था, पर दूसरी तरफ लोग तो अपनी सदियों पुरानी जड़ों से, अपनी कहानियों से जुड़े थे।
तो एक तनाव था वहां।
हाँ, एक गहरा तनाव जो आधिकारिक इतिहास बताया जा रहा था और जो लोगों के अपने अनुभव थे उनके बीच, और इसका असर मुयान की पीढ़ी पर बहुत गहरा पड़ा।
और फिर आया वो सांस्कृतिक क्रांति का भूचाल 1966 से 76 तक। उसने तो जैसे चीन की आत्मा को हिला दिया।
निश्चित रूप से,
मोयान का लेखन इसी सदमे से उभरते चीन में पनपा है ना?
बिल्कुल। सांस्कृतिक क्रांति के बाद एक एक ठहराव सा आ गया था। फिर 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक में साहित्य में जैसे एक नई जान आई।
अच्छा,
पहले आया वो स्कार लिटरेचर, मतलब जख्मों का साहित्य। इसमें लोग अपने ऊपर हुए जुल्म, अपने दर्दनाक अनुभव लिख रहे थे, सांस्कृतिक क्रांति के दौरान जो हुआ। ये जरूरी था, पर यह बहुत भारी था भावनात्मक रूप से।
लेकिन मोयान और उनके साथी लेखक शायद इसे आगे जाना चाहते थे। यहीं से वो रूट सीकिंग लिटरेचर या जड़ों की तलाश का आंदोलन शुरू हुआ।
हाँ, बिल्कुल। स्युन गन वंश्वे, जड़ों की तलाश। इस आंदोलन का मकसद था कि चीनी पहचान को सिर्फ राजनीतिक नारों या जख्मों में न ढूंढा जाए, बल्कि देश की गहरी, अक्सर अनदेखी की गई लोक कथाओं में, मिथकों में, ग्रामीण जीवन की जो अदम्य जीवटता है, और हाँ, उसकी क्रूरता में भी उसे खोजा जाए।
अच्छा,
मुयान, युवा, सुतोंग जैसे लेखक, ये समाजवादी यथार्थवाद के बंधनों को तोड़ रहे थे। वो चीन का असली, मिट्टी से जुड़ा चेहरा दिखाना चाहते थे।
और इसी दौर में पश्चिमी साहित्य का भी असर पड़ा। फॉकनर और गार्सिया मार्केस का नाम आता है।
बिल्कुल। विलियम फॉकनर ने कैसे अमेरिका के दक्षिण के एक छोटे से इलाके योकनापाटाओफा को अपनी कहानियों का केंद्र बनाया
हाँ,
और उसमें पूरी इंसानियत का अनुभव समेट लिया, या गार्सिया मार्केस ने कैसे लैटिन अमेरिका के सच को जादुई कल्पना से बुना।
जादुई यथार्थवाद।
जी, इन तरीकों ने चीनी लेखकों को एक नई राह दिखाई। उन्हें लगा कि वो भी अपनी स्थानीय कहानियों को, अपनी लोक परंपराओं को आधुनिक साहित्यिक तकनीकों के साथ मिलाकर कुछ नया बना सकते हैं।
और इसी मिट्टी से मोयान का मतिभ्रम यथार्थवाद उपजा।
बिल्कुल सही।
चलिए अब थोड़ा उनके निजी जीवन की ओर मुड़ते हैं। शैनडोंग प्रांत का वो गाओमी काउंटी, एक गरीब किसान परिवार।
हाँ, ये अनुभव उनके लेखन की, आप कह सकते हैं, मिट्टी हैं।
हाँ,
उनका बचपन भूख और तंगी में बीता। वो 1959 से 61 का जो महाअकाल था,
उसके बारे में पढ़ा है।
उसकी भयानक यादें उनके कई उपन्यासों में बार बार आती हैं। फिर वो सांस्कृतिक क्रांति आ गई और सिर्फ 11-12 साल की उम्र में उनकी स्कूली पढ़ाई छूट गई।
इतनी कम उम्र में?
जी, उन्हें मवेशी चराने भेजा गया, फिर एक कॉटन ऑयल फैक्ट्री में काम करने। मतलब औपचारिक शिक्षा तो लगभग खत्म ही हो गई थी।
तो क्या ये कहना सही होगा कि उनकी असली शिक्षा गांव के बड़े बूढ़ों की कहानियों से हुई, लोक कथाओं से?
बहुत हद तक उनकी दादी, गांव के दूसरे लोग जो कहानियां सुनाते थे, भूतों की, प्रेतों की, लोक नायकों की, ऐतिहासिक किस्से, वो उनकी कल्पना का ईंधन बनी।
अच्छा।
और वो जो मौखिक परंपरा है ना, किस्सा सुनाने का अंदाज, वो उनकी लेखनी में साफ झलकता है। वो किताबी लेखक से ज्यादा एक कथावाचक जैसे लगते हैं।
और फिर 1976 में एक बड़ा मोड़ आया, वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA में शामिल हो गए।
यकीनन, ये उनके जीवन का एक बहुत अहम मोड़ था। सेना ने उन्हें सिर्फ गरीबी से नहीं निकाला,
बल्कि
एक स्थिरता दी, पढ़ने का मौका दिया, और सेना की लाइब्रेरी के जरिए साहित्य की दुनिया से उनका गहरा परिचय हुआ।
वहीं उन्होंने लिखना शुरू किया।
जी, और बाद में उन्हें PLA अकेडमी ऑफ आर्ट्स में साहित्य पढ़ने का मौका भी मिला। तो एक तरह से सेना ही उनकी यूनिवर्सिटी बन गई।
उनकी पहली कहानी 1981 में छपी, लेकिन असली पहचान मिली ट्रांसपेरेंट रेडिश से 1985 में।
हाँ।
और फिर अगले ही साल 1986 में आया उपन्यास रेड सॉर्गम क्लैन। उसने तो उन्हें रातों रात चीनी साहित्य का एक बड़ा नाम बना दिया।
हाँ, रेड सॉर्गम क्लैन एक धमाके जैसा था। लेकिन इसी के साथ चीनी सत्ता के साथ उनके जो जटिल रिश्ते हैं, उसकी शुरुआत भी हुई।
कैसे?
देखिए, वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, सरकारी लेखक संघ में भी रहे हैं। इस वजह से खासकर 2012 में नोबेल मिलने के बाद उन पे ये आरोप लगे कि वो सत्ता के करीबी हैं, उस व्यवस्था का हिस्सा हैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाती है।
ये तो एक मुश्किल स्थिति है। क्या वो खुद को, जैसा कुछ आलोचक कहते हैं, एक दरबारी विदूषक या कोर्ट जस्टर की तरह देखते हैं?
ये एक दिलचस्प व्याख्या है।
मतलब जो व्यवस्था के अंदर रहकर सीधे भिड़ने के बजाय व्यंग से, रूपक से, इतिहास की कहानियों के जरिए सच कहने की कोशिश करता है।
शायद इसमें कुछ सच्चाई हो। मोयान ने खुद भी कहा है कि हर कोई सड़क पर उतरकर नारे नहीं लगा सकता। कुछ लोग अपने कमरे में बैठकर साहित्य के जरिए अपनी बात कहते हैं।
अच्छा।
वो शायद मानते हैं कि व्यवस्था के भीतर रहकर कला के माध्यम से आलोचना करना शायद ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा सुरक्षित तरीका है। लेकिन हाँ, ये सवाल हमेशा रहता है कि ये समझाता है या रणनीति।
इसी जटिलता को ध्यान में रखते हुए उनके मुख्य साहित्यिक योगदान पर आते हैं। मति भ्रम यथार्थवाद पर हमने बात की, पर इसकी खासियत क्या है? ये मार्केस से अलग कैसे है?
इसकी खासियत है इसका बहुत ज्यादा शारीरिक होना, फिजिकल होना। गार्सिया मार्केस का जादुई यथार्थवाद जहां अक्सर थोड़ा काव्यात्मक होता है,
हाँ,
वहीं मोयान का यथार्थवाद ज्यादा विभत्स है, ज्यादा जमीनी। भूख, दर्द, वासना, हिंसा, ये सब बहुत ही ठोस रूप में मौजूद है।
अच्छा।
और इन्हीं के बीच भूत, प्रेत, पुनर्जन्म लेते जानवर आ जाते हैं। तो कल्पना यहाँ यथार्थ से भागने का रास्ता नहीं है,
बल्कि
यथार्थ के भयावहता को और गहरा करने का माध्यम बन जाती है, ऐसा लगता है।
और इस सब के लिए उन्होंने एक मंच तैयार किया अपना, वो काल्पनिक नॉर्थ ईस्ट गाउमी टाउनशिप, जैसे फॉकनर का योकनापा टावाफा काउंटी।
बिल्कुल बिल्कुल, वो छोटा सा गांव, वो ग्रामीण इलाका उनके लिए पूरे 20वीं सदी के चीन का प्रतीक बन जाता है।
वाह।
वहीं पर इतिहास के बड़े बड़े नाटक होते हैं, क्रांतियां होती हैं, युद्ध लड़े जाते हैं, और इन सब के बीच पिसता है आम इंसान।
और उनकी भाषा, वो भी उतनी ही जमीनी है?
उतनी ही जमीनी। गांव की बोली थोड़ी अश्लील, थोड़ी भदेस भी लग सकती है, लेकिन ऊर्जा से भरी हुई। वो उनकी मौखिक कथा परंपरा से आती है।
तो क्या उनके लेखन का जो केंद्रीय सरोकार है वो यही है, इतिहास की बड़ी बेरहम मशीनरी और आम आदमी की जिंदगी के बीच का टकराव?
हाँ, ये उनके काम का आप कह सकती हैं मूल तत्व है। वो उन लोगों की कहानियां कहते हैं जिन्हें आधिकारिक इतिहास वो अक्सर नजरअंदाज कर देता है।
जैसे कि
किसान, सैनिक, औरतें, डाकू, हाशिए पर पड़े लोग। वो दिखाते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी विचारधाराएं, राजनीतिक उथल पुथल आम जिंदगियों को रौंदती हुई गुजर जाती हैं।
तो एक तरह से वो चीन के सरकारी इतिहास के समानांतर एक अनौपचारिक इतिहास रच रहे हैं।
बिल्कुल, एक ज्यादा मानवीय, ज्यादा सच्चा इतिहास।
और इसमें वो उन विषयों को भी लाने से नहीं हिचकते जो शायद दशकों तक चीनी साहित्य में वर्जित से थे, जैसे बेलगाम हिंसा और कामुकता।
सही कहा, उन्होंने इन विषयों पर बहुत खुलकर लिखा। इससे चीनी साहित्य में एक नई तरह की बेबाकी आई।
चलिए अब उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं पर नजर डालते हैं। इससे ये विचार और साफ होंगे। रेड सोरमम क्लैन 1986 से शुरू करते हैं।
जी, ये चीन जापान युद्ध की पृष्ठभूमि पर है, लेकिन ये कोई पारंपरिक वीरगाथा नहीं है।
अच्छा।
ये उनके दादा दादी की पीढ़ी की एक तरह की मिथकीय कहानी है, जिसमें जोशीले डाकू हैं, शराब बनाने वाले हैं, जुझारू औरतें हैं, जो पूरे जुनून, क्रूरता और अदम्य जीवन शक्ति के साथ जीते और मरते हैं। वो ज्वार के जो लाल खेत हैं, वो जैसे उनके खून और जुनून का प्रतीक बन जाते हैं। इस उपन्यास ने पारंपरिक ऐतिहासिक उपन्यासों का ढांचा तोड़ दिया।
इस मिथकीय अतीत से वो द गार्लिक बैलेट्स 1988 में समकालीन यथार्थ की तरफ आते हैं।
हाँ, ये उनके अपने ही इलाके में लहसुन उगाने वाले किसानों के एक असली विद्रोह पर आधारित है।
ओह, वाकई?
जी, यहाँ वो सीधे सीधे नौकरशाही के भ्रष्टाचार और राज्य की जो उदासीनता है उस पर चोट करते हैं। ये दिखाता है कि वो सिर्फ अतीत में नहीं खोए रहते, अपने समय के सच से भी टकराते हैं।
फिर आती है द रिपब्लिक ऑफ वाइन 1992। ये तो काफी अलग लगती है।
इसे मेटाफिक्शनल व्यंग्य कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ?
मेटाफिक्शनल मतलब कहानी खुद अपने कहानी होने के बारे में बात करती है।
अच्छा।
पाठक को लगातार याद दिलाया जाता है कि वो एक रची हुई दुनिया पढ़ रहा है। द रिपब्लिक ऑफ वाइन एक बहुत ही जटिल परत दर परत उपन्यास है। ये आधुनिक चीन में फैले भ्रष्टाचार, चापलूसी, नैतिक पतन पर एक बहुत तीखा व्यंग्य है। इसमें खाने पीने का, खासकर शराब का, और कथित तौर पर बच्चों के मांस के सेवन का एक रूपक की तरह जिक्र आता है, जिसके जरिए वो समाज की सड़न को दिखाते हैं। ये उनकी प्रयोगधर्मी शैली का शायद शिखर है, और जिसे कई आलोचक उनका सबसे महत्वपूर्ण काम मैग्नम ओपस मानते हैं, बिग ब्रेस्ट्स एंड वाइड हिप्स 1995।
हाँ, ये एक बहुत विशाल कैनवस वाला उपन्यास है। इसमें 20वीं सदी के चीन का लगभग पूरा इतिहास समाया हुआ है।
पूरा इतिहास?
हाँ, बॉक्सर विद्रोह से लेकर कम्युनिस्ट क्रांति और उसके बाद के सुधारों तक, ये सब एक माँ और उसके 9 बच्चों की कहानी के जरिए कहा गया है।
एक माँ के नजरिए से?
जी, और वो माँ जैसे खुद चीन का ही प्रतीक बन जाती है, जो सब कुछ सहती है, सब कुछ झेलती है। इसमें क्रांति के कुछ असहज पहलुओं को भी दिखाया गया है, जिस वजह से इसे चीन में कुछ समय के लिए बैन भी कर दिया गया था।
ओह, कहानी कितनी मार्मिक लग रही है। और फिर एक और अद्भुत कल्पना वाला उपन्यास, लाइफ एंड डेथ आर वेयरिंग मी आउट 2006, पुनर्जन्म का विचार।
हाँ, ये कमाल का आइडिया है। कहानी एक जमींदार की है, जिसे भूमि सुधारों के दौरान मार दिया जाता है।
ठीक है।
वो नर्क में जाता है, शिकायत करता है कि उसे गलत मारा गया, तो उसे सजा के तौर पर अगले 50 साल तक जानवर के रूप में पृथ्वी पर बार बार जन्म लेना पड़ता है।
जानवर के रूप में?
हाँ, गधा, बैल, सुअर, कुत्ता, बंदर, इन जानवरों की नजरों से वो चीन के 50 सालों के राजनीतिक और सामाजिक बदलावों को देखता है।
आह, क्या कल्पना है।
ये माओयोग पर एक अविश्वसनीय रूप से कल्पनाशील और साथ ही बहुत मार्मिक टिप्पणी है।
और उनकी हाल की चर्चित रचनाओं में फ्रॉग 2009 का नाम आता है, जो चीन की एक बच्चा नीति जैसे संवेदनशील मुद्दे को छूती है।
हाँ, ये उपन्यास एक ग्रामीण दाई यानी मिडवाइफ की कहानी कहता है, जो पहले तो कई बच्चों के जन्म में मदद करती है।
जी।
लेकिन जब एक बच्चा नीति लागू होती है तो उसे जबरन गर्भपात कराने पड़ते हैं। ये उस नीति की मानवीय त्रासदियों और नैतिक दुविधाओं को बड़ी संवेदनशीलता से सामने लाता है, बिना कोई आसान फैसला सुनाए। ये मोयान की परिपक्वता दिखाता है।
इन असाधारण कामों के लिए उन्हें पहचान भी खूब मिली। चीन में तो लूशुन और माओदुन जैसे बड़े साहित्यिक पुरस्कार मिलेगी।
और फिर 2012 में आया साहित्य का नोबल पुरस्कार। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि वो ये सम्मान पाने वाले पहले चीनी नागरिक बने जो चीन में रह रहे थे।
हाँ।
स्वीडिश एकेडमी ने उनके मतिभ्रम, यथार्थवाद और इतिहास, लोक कथाओं और समकालीनता को मिलाने की उनकी जो क्षमता है, उसकी तारीफ की।
लेकिन ये पुरस्कार विवादों से भी घिरा रहा है ना?
हाँ, बिल्कुल। जहाँ चीनी सरकार ने इसे एक राष्ट्रीय गौरव का क्षण बताया, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और कुछ लेखकों ने इसकी आलोचना की।
किस आधार पर?
उनका कहना था कि चीन सरकार द्वारा स्वीकृत लेखक को पुरस्कार देना, जबकि एक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लियू शाओबो उसी समय चीन की जेल में थे, ये एक गलत संदेश देता है। इसने मोयान की साहित्यिक प्रतिष्ठा पर एक राजनीतिक बहस की छाया डाल दी।
तो आज मोयान की विरासत को कैसे देखा जाता है? चीन में और चीन के बाहर।
चीन के अंदर तो वो निश्चित रूप से एक युगांतरकारी लेखक माने जाते हैं। उन्होंने 80 के दशक में समाजवादी यथार्थवाद का जो जड़ माहौल था उसे तोड़ा, रूट सीकिंग आंदोलन को ताकत दी और लेखकों की एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। उन्होंने लोक कथाओं और ग्रामीण चीन को साहित्यिक मुख्य धारा में वापस लाने का बहुत बड़ा काम किया।
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्वीर थोड़ी ज्यादा जटिल है।
हाँ,
एक तरफ तो जैंग यिमो की फिल्म रेड सॉर्गम ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई थी, नोबेल ने उसे और बढ़ाया,
लेकिन
दूसरी तरफ जैसा हमने बात की, कुछ लोगों ने राजनीतिक रूप से समझौता करने वाले लेखक के तौर पर देखते हैं, वहीं उनके लाखों पाठक हैं जो उन्हें एक महान कथाकार मानते हैं, जिनका सरोकार राजनीति से ज्यादा मानवीय अनुभव की गहराइयों को पकड़ना है, उसकी सुंदरता, उसकी कुरूपता, उसकी सहन शक्ति, इन सब को।
उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है
मेरे ख्याल से तो बिल्कुल। उनका काम 20वीं सदी के चीन का एक तरह का वैकल्पिक अनौपचारिक इतिहास है। अनौपचारिक इतिहास,
हाँ, एक ऐसा इतिहास जो आम लोगों के खून, पसीने और आंसुओं से लिखा गया है। आज जब चीन इतनी तेजी से बदल रहा है और शायद अपने अतीत को भुलाना भी चाहता है,
हाँ ये होता है,
मोयान की कहानियां उन गहराइयों की याद दिलाती हैं जो सतह के ठीक नीचे दबी हैं। और ये सिर्फ चीन के बारे में नहीं है, ये सत्ता, स्मृति, इतिहास और मनुष्य की जो अदम्य जिजीविषा है उसकी सार्वभौमिक कहानियां हैं।
उनके कुछ शब्द, कुछ उदाहरण भी उनके विचारों की अच्छी झलक देते हैं। जैसे रेड सॉर्गम क्लैन की शुरुआत में वो अपने गौमी इलाके के बारे में क्या कहते हैं।
वो लिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट गौमी टाउनशिप दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे घृणित, सबसे असामान्य और सबसे आम, सबसे पवित्र और सबसे भ्रष्ट, सबसे वीर और सबसे कमीनी, सबसे ज्यादा शराब पीने वाली और सबसे ज्यादा प्यार करने वाली जगह है।
वाओ, कितने विरोधाभास एक साथ।
हाँ, यही उनके लेखन का सार है, विरोधाभासों का संगम, जहाँ अच्छा और बुरा, पवित्र और अपवित्र सभी एक साथ रहते हैं।
और अपनी कला के उद्देश्य के बारे में उन्होंने क्या कहा है।
वो कहते हैं, मेरा कथा साहित्य मानव आत्मा की खोज है। मैं मानव स्वभाव के अंधेरे के बारे में लिखता हूँ, लेकिन मैं मानव स्वभाव की सुंदरता का भी जश्न मनाता हूँ। मेरा मानना है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा होती है।
ये बहुत अहम बात है।
हाँ, ये दिखाता है कि इतनी क्रूरता और विभत्सता के चित्रण के बावजूद उनके काम में कहीं ना कहीं एक गहरी मानवीय आस्था छिपी हुई है।
फिल्मों में उनके काम का रूपांतरण भी उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा रहा है। रेड सॉर्गम फिल्म का जिक्र तो करना ही होगा।
बिल्कुल, 1987 में आई झांग यिमो की रेड सॉर्गम सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक सांस्कृतिक घटना थी।
अच्छा।
उसके रंग, उसकी ऊर्जा, गोंग ली का अभिनय, उसका संगीत, उन सब ने मो यान के उपन्यास की आत्मा को जैसे पकड़ लिया था। इसने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बेयर जीता।
हाँ, सुना है।
और चीनी सिनेमा की 5वीं पीढ़ी के साथ साथ मो यान को भी दुनिया के नक्शे पर ला दिया। बहुत से लोगों के लिए मो यान का पहला परिचय शायद वही फिल्म थी।
झांग यिमो ने बाद में हैप्पी टाइम्स 2000 भी बनाई, जो उनकी एक कहानी पर आधारित थी, और नुआन 2003 जैसी फिल्में भी बनी।
जी, इन रूपांतरणों ने उनकी कहानियों को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। सिनेमा ने उनकी दुनिया को एक दृश्य रूप देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
तो इस पूरी चर्चा के बाद मो यान के काम और जीवन से हम क्या लेकर जा सकते हैं, एक अंतिम विचार?
शायद ये कि कहानियां, खासकर वो कहानियां जो अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से जुड़ी हों, वो इतिहास की बड़ी और अक्सर क्रूर सच्चाइयों को समझने और बयान करने का सबसे शक्तिशाली तरीका हो सकती हैं। मोयान यही दिखाते हैं
कि कैसे एक छोटे से गांव की कहानियों में पूरी दुनिया का दर्द और संघर्ष समा सकता है।
बिल्कुल।
और ये हमें इस सवाल पर भी छोड़ जाता है कि क्या सच कहने का हमेशा एक ही सीधा रास्ता होता है, या फिर रूपक, व्यंग, इतिहास की परतें और वो मतिभ्रम के जरिए कही गई बातें, क्या वो ज्यादा गहरी चोट कर सकती हैं?
हाँ।
खासकर उन समाजों में जहां खुलकर बोलना आज भी शायद आसान नहीं है। मोयान का काम इसका कोई बना बनाया जवाब नहीं देता, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।